नमस्कार, हमारे आज के इस खास सत्र में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि भाई हमारा शरीर जो है वो एकदम एक जटिल केमिकल फैक्ट्री जैसा है?
हाँ बिल्कुल, और जो खाना हम खाते हैं वो समझ लीजिए उसका ईंधन है।
सही कहा। या जैसे ये फैक्ट कि हमारे दिमाग का लगभग 70% हिस्सा पानी है, तो मतलब पानी पीते रहना सीधे सीधे सोचने की क्षमता को तेज कर सकता है।
बिल्कुल कर सकता है।
और जो स्रोत सामग्री है ना, उसमें कुछ और भी मजेदार बातें थीं, जैसे बादाम याददाश्त के लिए अच्छे माने जाते हैं,
हाँ ये तो सुना है।
और केले में जो पोटेशियम होता है वो फौरन एनर्जी दे सकता है,
अच्छा,
और यहां तक कि मसालेदार खाना खाने से एंडोर्फिन निकलते हैं, मतलब खुशी का एहसास।
अरे वाह,
और डार्क चॉकलेट, उसमें स्वाद तो है ही, पर उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो दिल की सेहत के लिए अच्छे बताए गए हैं चैप्टर में।
कमाल है।
तो आज हम इसी दिलचस्प दुनिया में उतर रहे हैं। हमारा विषय है फूड एंड न्यूट्रिशन।
यानी भोजन और पोषण।
हाँ, हम मिलकर आपकी दी हुई स्रोत सामग्री, खास तौर पर चैप्टर 3 को खंगालेंगे, समझेंगे कि एक सेहतमंद जिंदगी के लिए भोजन के कौन से पहलू सबसे अहम है। कोशिश यही रहेगी कि इस चैप्टर की जो मोटी मोटी बातें हैं वो आसानी से समझ आ जाएं।
हाँ, और इस चैप्टर में काफी कुछ है। हम शुरुआत करेंगे भोजन और उसके मुख्य घटकों से, मतलब कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। देखेंगे कि खाने में क्या क्या होता है जो हमारी शरीर के लिए जरूरी है।
ठीक है, फिर हम समझेंगे कि चैप्टर 3 के हिसाब से एक बैलेंस्ड डाइट क्या होती है और इसका क्या महत्व बताया गया है।
बिल्कुल, इसके बाद एक बहुत जरूरी हिस्सा है लाइफस्टाइल और डेफिशिएंसी डिजीजेस का। ये वो बीमारियां हैं जो या तो हमारी आजकल की जीवन शैली की वजह से होती है या फिर खाने में किसी चीज की कमी से। चैप्टर इस पर काफी जोर देता है।
अच्छा, और आखिर में हम हेल्दी ईटिंग हैबिट्स पर भी नजर डालेंगे, और साथ ही आजकल जो इतना चलन में है जंक फूड, उसके बारे में चैप्टर क्या कहता है इस पर भी बात करेंगे।
तो चलिए शुरू करते हैं।
तो सबसे पहले ये चैप्टर भोजन को देखता कैसे है? आपने कहा ईंधन की तरह।
हाँ, एक तरह से गाड़ी के ईंधन की तरह समझाया गया है। ये असल में पोषक तत्वों का, मतलब न्यूट्रिएंट्स का एक कलेक्शन है।
सही कहा। और ये ईंधन करता क्या है? चैप्टर के मुताबिक ये हमें एनर्जी देता है ना?
हाँ, एनर्जी देता है, शरीर के पुराने टिश्यूज की मरम्मत करता है, नए बनाता है, और हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत भी देता है।
और चैप्टर 3 में भोजन के 7 मुख्य घटकों का जिक्र है: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज और वाटर। हर एक का अपना खास काम है।
चलिए कार्बोहाइड्रेट से शुरू करते हैं। इन्हें चैप्टर में एनर्जी गिविंग फूड्स कहा गया है।
एनर्जी देने वाले।
हाँ, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इनका मुख्य काम शरीर को ऊर्जा देना है। इसीलिए जो लोग ज्यादा मेहनत वाला काम करते हैं उन्हें इनकी ज्यादा जरूरत होती है। ये बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से।
चैप्टर 3 में इनके 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है शुगर।
हाँ, सिंपल शुगर, जो स्वाद में मीठा होता है।
बिल्कुल, जैसे फल, गन्ना, केला, अंगूर, फिर शहद, दूध, इन सब में मिलता है।
दूसरा है स्टार्च, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और स्वादहीन।
जैसे?
जैसे गेहूं, चावल, आलू, इन चीजों में ये पाया जाता है।
ठीक है, और तीसरा है सेल्यूलोज।
ये भी कॉम्प्लेक्स है और पौधों की सेल वॉल का हिस्सा होता है।
अच्छा,
यहाँ ना चैप्टर एक बहुत जरूरी बात पर रोशनी डालता है कि हम कार्बोहाइड्रेट्स ले कहाँ से रहे हैं। स्रोत की क्वालिटी, मतलब अनप्रोसेस्ड होल ग्रेन्स, सब्जियां, फल, ये बेहतर है क्योंकि इनमें फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स भी साथ में मिलते हैं। दूसरी तरफ जो सफेद ब्रेड है, पेस्ट्री है, सोडा है, ये सब प्रोसेस्ड या रिफाइंड चीजें हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट तो होता है पर बाकी पोषक तत्व कम होते हैं।
तो ये सेहत के लिए अच्छे नहीं है?
चैप्टर के अनुसार इन्हें सेहत के लिए अच्छा नहीं माना गया। इनसे वजन बढ़ना, डायबिटीज और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।
हाँ, और चैप्टर में स्टार्च की मौजूदगी जांचने के लिए आयोडीन वाले टेस्ट का सिर्फ सिद्धांत बताया गया है, मतलब पूरी प्रक्रिया नहीं, बस आइडिया।
हाँ, मूल विचार यह है कि आयोडीन घोल स्टार्च के संपर्क में आकर नीला काला रंग देता है। जितना गहरा रंग उतना ज्यादा स्टार्च।
ठीक है, अब आते हैं प्रोटीन्स पर। इन्हें चैप्टर बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहता है।
बॉडी बिल्डिंग फूड्स,
हाँ, इनका मुख्य काम शरीर की ग्रोथ में मदद करना है, मांसपेशियां बनाना और जो टूट फूट गए ऊतक हैं उनकी मरम्मत करना।
बिल्कुल, और चैप्टर बताता है कि हमें प्रोटीन पौधों से भी मिल सकता है और जानवरों से भी।
हाँ, जैसे दालें, सोयाबीन, चना, मेवे, ये सब तो पौधों से मिलने वाले स्रोत हो गए।
और मांस, मछली, अंडे, दूध, ये जानवरों से मिलने वाले प्रोटीन के स्रोत हैं। शरीर के बनने और उसकी मरम्मत के लिए ये बहुत जरूरी हैं।
अगला अहम घटक है फैट्स।
हाँ, फैट्स। मक्खन, घी, दूध, अंडे की जर्दी, मेवे और खाना पकाने के तेल, ये फैट्स के मुख्य स्रोत बताए गए हैं चैप्टर में।
और इनका काम क्या है? चैप्टर कहता है ये एनर्जी बैंक है।
बिल्कुल। शरीर जो जरूरत से ज्यादा एनर्जी होती है ना, उसे फैट के रूप में जमा कर लेता है। ये स्टोर्ड फैट बाद में एनर्जी देने के काम आता है, इसीलिए इसे शरीर का एनर्जी बैंक भी कहा गया है।
दिलचस्प बात यह है कि फैट्स कुछ जरूरी विटामिन्स ए, डी, ई और के को शरीर में एब्जॉर्ब होने में भी मदद करते हैं।
हाँ बिल्कुल, इनके एब्जॉर्प्शन के लिए फैट जरूरी है। और साथ ही ये शरीर से गर्मी को बाहर निकलने से रोककर शरीर को गर्म रखने में भी भूमिका निभाते हैं।
यही पर कैलोरीज का जिक्र भी आता है ना?
हाँ, चैप्टर के अनुसार कैलोरीज भोजन से मिलने वाली एनर्जी को मापने की इकाई है। किसी भी पैक्ड फूड के न्यूट्रिशन फैक्ट्स लेबल पर ये जानकारी अक्सर मिलती है कि उसमें कितनी कैलोरीज हैं और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स कितने हैं।
लेकिन चैप्टर एक चेतावनी भी देता है कि बहुत ज्यादा फैट खाना नुकसानदायक हो सकता है।
हाँ, इससे ओबेसिटी यानी मोटापा हो सकता है और मोटापे से जुड़ी दूसरी बीमारियां जैसे दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का खतरा भी बढ़ जाता है।
फैट्स के बाद अब बात करते हैं विटामिंस की। विटामिन्स वो पोषक तत्व हैं जिनकी हमारे शरीर को सही ढंग से काम करने और बीमारियों से लड़ने के लिए जरूरत होती है, और चैप्टर ये साफ करता है कि हमारा शरीर इन्हें बना नहीं सकता।
हाँ, इसलिए हमें इन्हें भोजन या सप्लीमेंट से ही लेना पड़ता है। गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां, मछली, अंडे, फल इसके अच्छे स्रोत हैं।
कुल 13 विटामिन्स हैं जो शरीर के लिए जरूरी माने जाते हैं,
और इनकी कमी से डिफिशियंसी डिजीजेस हो सकती हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे।
हाँ, वैसे चैप्टर में विटामिन से जुड़े कुछ रोचक तथ्य भी दिए गए हैं।
जैसे?
जैसे सभी 13 जरूरी विटामिन्स की खोज सिर्फ 28 साल के अंदर हुई। पहला विटामिन ए 1913 में और आखिरी फॉलिक एसिड 1941 में। ये काफी तेज खोज थी, है ना?
वाकई। और क्या है, स्क्रीन का इस्तेमाल इतना बढ़ गया है वो त्वचा की विटामिन डी बनाने की क्षमता को 95% तक कम कर सकता है।
ओह, ये तो काफी ज्यादा है। ये एक अहम जानकारी है, खासकर आजकल की लाइफस्टाइल में।
बिल्कुल, विटामिन्स के साथ साथ मिनरल्स भी बहुत जरूरी हैं।
हाँ, जैसे कौन से मिनरल्स?
विटामिन्स की तरह ही मिनरल्स भी शरीर की ग्रोथ, विकास और अच्छी सेहत के लिए चाहिए। शरीर इनका इस्तेमाल कई कामों में करता है, हड्डियां मजबूत बनाने से लेकर नसों के संदेश भेजने तक।
अच्छा।
कुछ मिनरल्स हार्मोन बनाने या दिल की धड़कन सामान्य रखने में भी मदद करते हैं।
चैप्टर में उदाहरण दिए गए हैं जैसे दूध कैल्शियम के लिए अच्छा है।
हाँ, हरी सब्जियां आयरन के लिए और मछली या नमक आयोडीन के लिए अच्छे स्रोत बताए गए हैं।
ठीक है, अगला नंबर आता है रफिज का,
जिसे डायटरी फाइबर्स भी कहते हैं।
ये हमें फलों, सब्जियों और अनाज से मिलता है। चैप्टर ये साफ करता है कि रफिज कोई पोषक तत्व नहीं देता और पचता भी नहीं है।
हाँ, पचता नहीं है, फिर भी हमारे खाने का अहम हिस्सा है। ये भोजन में वजन या बल्क जोड़ता है, जिससे पाचन आसान होता है और कब्ज मतलब कॉन्स्टिपेशन से बचाव होता है।
इसे प्रकृति का झाड़ू कहा गया है चैप्टर में।
हाँ, क्योंकि ये आंतों को साफ रखने में मदद करता है। चैप्टर में कुछ फाइबर टिप्स भी दिए गए हैं।
क्या है वो?
जैसे फाइबर वाला नाश्ता करें, खाने में बीज, फलियां, सब्जियां शामिल करें, जूस की जगह साबुत फल खाएं।
हाँ, क्योंकि फल में फाइबर होता है।
बिल्कुल, मेवे सूखे मेवे खाएं और हाँ, खूब पानी पिएं ताकि फाइबर अपना काम ठीक से कर पाए।
और आखिर में लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण, वाटर, पानी।
जैसा आपने शुरू में कहा था, हमारा शरीर करीब 70% पानी से बना है। अच्छी सेहत के लिए पानी बेहद जरूरी है।
हाँ, पसीने और मूत्र के जरिए शरीर से काफी पानी निकल जाता है।
बिल्कुल, इसलिए चैप्टर रोजाना 8-10 गिलास पानी पीने की सलाह देता है।
पानी के काम भी बहुत सारे हैं जो चैप्टर में गिनाए गए हैं, जैसे ये शरीर के अंदर चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता है।
हाँ, शरीर का तापमान कंट्रोल रखता है, खाने से पोषक तत्वों को सोखने में मदद करता है,
और पाचन के बाद जो जहरीले पदार्थ, टॉक्सिन्स होते हैं और कचरा होता है, उसे शरीर से बाहर निकालता है।
इतना ही नहीं, शरीर में होने वाली ढेरों केमिकल क्रियाओं जैसे पाचन, उत्सर्जन, श्वसन वगैरह के लिए भी पानी चाहिए।
और अगर शरीर में पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाए तो
उसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। चैप्टर बताता है कि इसका इलाज ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन यानी ओआरएस देकर किया जा सकता है।
ओआरएस घर पर बनाने का तरीका भी दिया है चैप्टर में।
हाँ दिया है। 1 लीटर साफ पानी में 6 छोटे चम्मच चीनी और आधा छोटा चम्मच नमक मिलाएं। बस बन गया ORS।
अच्छा, तो ये थे भोजन के वो 7 मुख्य घटक जिनके बारे में चैप्टर 3 में विस्तार से बताया गया है।
अब इन घटकों को सही मात्रा में लेना क्यों जरूरी है, ये हमें बैलेंस्ड डाइट के कॉन्सेप्ट से समझ आता है।
बिल्कुल, बैलेंस्ड डाइट यानी संतुलित आहार। चैप्टर इसे ऐसे परिभाषित करता है, एक ऐसा आहार जिसमें शरीर को ठीक से काम करने के लिए सभी जरूरी पोषक तत्व सही और पर्याप्त मात्रा में मौजूद हों।
इसे पानी के लिए चैप्टर 3 में 4 मूल भोजन समूहों का जिक्र है जिनसे हमें अपने खाने की चीजें चुननी चाहिए।
हाँ, पहला है दूध समूह, मिल्क ग्रुप। इसमें दूध, पनीर, आइसक्रीम जैसी चीजें आती हैं।
ठीक है। दूसरा है मांस और फलियां समूह, मीट एंड बीन्स ग्रुप। इसमें मांस, मछली, मुर्गी, अंडे, सूखी फलियां, मेवे शामिल है।
तीसरा है फल और सब्जियां समूह,
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रुप। और चौथा है अनाज और धान्य समूह। इन 4 समूहों से चीजें लेकर खाने से एक संतुलित आहार बनता है।
अब सवाल उठता है कि भाई ये संतुलित आहार इतना जरूरी क्यों है?
हाँ, चैप्टर 3 इसके कई फायदे गिनाता है। ये बीमारियों और इन्फेक्शन से बचाता है क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है।
और
ये दिल की बीमारी, डायबिटीज, स्ट्रोक जैसी कई गंभीर समस्याओं को रोकने में मदद कर सकता है।
साथ ही वजन को कंट्रोल में रखने में भी मददगार है।
बिल्कुल, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। डिप्रेशन और एंग्जाइटी के लक्षण कम करने में मदद मिल सकती है, ऐसा चैप्टर कहता है।
शरीर की कोशिकाओं के बनने और रखरखाव के लिए भी जरूरी है, मतलब ग्रोथ सही होती है।
हाँ, और अच्छा खाएंगे तो त्वचा और बाल भी स्वस्थ रहेंगे, इंसान ज्यादा जवान दिखता है।
तो संतुलित आहार ना लेने के नतीजे क्या हो सकते हैं, ये हमें अगले सेक्शन से पता चलता है, लाइफस्टाइल और डिफिशिएंसी डिजीजेस।
हाँ, पहले लाइफस्टाइल डिजीजेस की बात करते हैं। चैप्टर के अनुसार ये वो बीमारियां हैं जो हमारे जीने के तरीके, हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हैं।
मतलब हमारी आदतों से, जैसे
सेहतमंद खाने की जगह जंक फूड चुनना, या फिर शारीरिक रूप से एक्टिव न रहना, मतलब कोई कसरत या मेहनत वाला काम न करना। ये आदतें धीरे धीरे बीमारियों को न्योता देती हैं।
चैप्टर 3 में कुछ आम लाइफस्टाइल डिजीजेस के उदाहरण दिए गए हैं।
हाँ, जैसे ओबिसिटी, स्ट्रोक, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर। ओबिसिटी यानी मोटापा, जिसका कारण अक्सर कम शारीरिक गतिविधि और अनहेल्दी खाना होता है।
और रोकथाम?
रोकथाम के लिए नियमित व्यायाम और सेहतमंद डाइट प्लान अपनाने की सलाह दी गई है। स्ट्रोक का खतरा भी ज्यादा वजन और सुस्त जीवन शैली से बढ़ता है। रोकथाम के लिए भी वही उपाय हैं, स्वस्थ आहार, वजन कंट्रोल और नियमित व्यायाम।
डायबिटीज के बारे में क्या है?
डायबिटीज की स्थिति तब बनती है जब पैनक्रियास पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता, जिससे खून में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। चैप्टर के अनुसार नियमित अंतराल पर खाना, कम काब वाला भोजन, नियमित व्यायाम और चीनी से परहेज करके इसे कंट्रोल किया जा सकता है।
और हाई ब्लड प्रेशर?
ये अक्सर ज्यादा नमक और फैट वाले खाने और कसरत की कमी से होता है। इसे रोकने के लिए नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और नमक कम खाने की सलाह चैप्टर देता है।
ठीक है, अब आते हैं डिफिशिएंसी डिजीजेस पर।
हाँ, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये बीमारियां खाने में जरूरी पोषक तत्वों की कमी से होती हैं।
जैसे अगर खाने में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो
तो शरीर में ऊर्जा और स्टैमिना की कमी महसूस होती है। जो लोग ज्यादा शारीरिक मेहनत करते हैं उन्हें इसकी ज्यादा जरूरत होती है, जैसा हमने पहले बात की थी।
और प्रोटीन की कमी से?
प्रोटीन की कमी से मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं, मसल वेस्टिंग, घाव भरने में देर लग सकती है और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। चैप्टर बताता है कि प्रोटीन की बहुत ज्यादा कमी से क्वेश्योर कॉर्ड नाम की बीमारी होती है। और अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी हो जाए, जिसे PEM यानी प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन कहा गया है, तो मैरास्मस नाम की स्थिति बन जाती है। ये गंभीर कुपोषण के रूप है।
विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से भी बीमारियां होती हैं, उनकी तो कम मात्रा में जरूरत होती है।
हाँ, जरूरत कम मात्रा में होती है, पर उनकी कमी से भी कई तरह की गड़बड़ियां हो सकती हैं। चैप्टर 3 में इनका जिक्र है।
जैसे
उदाहरण के लिए विटामिन A की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी होती है,
जिसमें कम रोशनी में दिखना बंद हो जाता है।
हाँ, गाजर, पपीता इसके स्रोत बताए गए हैं। विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, जिसमें कमजोरी, थकान, नसों को नुकसान होता है। अंडे, दालें इसके स्रोत हैं।
विटामिन C की कमी से स्कर्वी, इसके लक्षण क्या बताए हैं चैप्टर में?
चैप्टर बताता है मसूड़ों से खून आना, दांत ढीले होना, घाव देर से भरना, खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, टमाटर इसके अच्छे स्रोत हैं।
विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है।
हाँ, सूखा रोग जिसमें हड्डियां नरम और टेढ़ी हो जाती हैं। मछली का तेल, दूध और धूप इसके स्रोत हैं।
कैल्शियम की कमी से भी रिकेट्स होता है?
हाँ, बच्चों में और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया यानी हड्डियों का नरम होना या ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का भुरभुरा होना हो सकता है। दूध, दही इसके मुख्य स्रोत हैं।
आयरन की कमी से एनीमिया, खून की कमी।
बिल्कुल, इसके लक्षणों में पीलापन, कमजोरी, थकान, सांस फूलना शामिल हैं। लिवर, हरी पत्तेदार सब्जियां इसके अच्छे स्रोत हैं।
और आयोडीन की कमी?
इससे गॉइटर यानी घेंगा रोग होता है, जिसमें गले में थायराइड ग्रंथि सूज जाती है। मछली और नमक इसके स्रोत हैं।
तो इन सब बीमारियों से बचने के लिए जरूरी है कि हम हेल्दी ईटिंग हैबिट्स अपनाएं। चैप्टर इस बात पर जोर देता है कि बचपन में सीखी अच्छी आदतें बड़े होने पर एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने में बहुत मदद करती हैं।
हाँ, बिल्कुल।
और चैप्टर में कुछ खास आदतें सुझाई भी गई हैं,
जैसे कि
रोज सुबह सेहतमंद नाश्ता करें। इसे दिन का सबसे जरूरी भोजन बताया गया है। मीठा और नमक कम खाएं, खूब पानी पिएं, दिन में 8-10 ग्लास। ये न भूलें कि फलों और सब्जियों में भी पानी होता है।
रोजाना रंग बिरंगे फल और सब्जियां खाएं।
मतलब
अलग अलग रंग, मतलब अलग अलग पोषक तत्व। हरी पत्तेदार सब्जियां, पत्ता गोभी, ब्रोकली, सलाद, लाल और नारंगी सब्जियां चुनें।
फलों के रस की जगह ताजे फल चुनें, खासकर पैकेट वाले जूस की जगह।
हाँ, चैप्टर याद दिलाता है कि फलों में फाइबर होता है, जबकि जूस में अक्सर बढ़ती चीनी और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं।
खाने से जंक फूड, सफेद चीनी, मैदा, ट्रांस फैट को हटाएं या बहुत कम कर दें।
हाँ, ट्रांस फैट जो पेस्ट्री, फास्ट फूड वगैरह में होता है, प्रोसेस्ड खाने से बचें। खूब सलाद खाएं फाइबर के लिए और दही खाएं। सलाद की ड्रेसिंग ध्यान से चुनें, जैतून का तेल और नींबू बेहतर विकल्प है।
दिन में 4-5 बार कम मात्रा में और लगभग एक ही समय पर खाएं, कोई भी मील छोड़े नहीं।
और अब आते हैं उस चीज पर जिससे बचने की सलाह दी जा रही है, जंक फूड।
हाँ, जंक फूड।
चैप्टर 3 जंक फूड को ऐसे खाने के तौर पर परिभाषित करता है जो प्रोसेस्ड होता है, जिसमें कैलोरी बहुत ज्यादा होती है लेकिन पोषक तत्व या तो बहुत कम होते हैं या बिल्कुल नहीं होते,
और इसमें अक्सर नमक, चीनी और फैट भी बहुत ज्यादा होता है।
हाँ, चैप्टर जंक फूड के कई हानिकारक प्रभावों की लिस्ट देता है। ये पेट तो भर देता है लेकिन शरीर को एनर्जी देने वाले जरूरी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट इसमें नहीं होते।
और पाचन पर भी असर डालता है।
हाँ, इसमें इस्तेमाल होने वाला तेल पेट में एसिडिटी और पाचन की दिक्कतें पैदा कर सकता है। ये खून में शुगर के लेवल में तेजी से उतार चढ़ाव लाता है, जिससे आगे चलकर डायबिटीज का खतरा बढ़ता है।
चैप्टर के अनुसार ये दिमागी कामकाज को भी प्रभावित कर सकता है।
हाँ, दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ाता है और किडनी की बीमारी और लिवर को भी नुकसान पहुंचा सकता है।
बाप रे, काफी नुकसान है।
तो संक्षेप में देखें तो चैप्टर 3 हमें भोजन और पोषण की एक पूरी तस्वीर देता है। हमने इसके जरिए भोजन के अलग अलग घटकों, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज और वाटर की अहमियत को समझा।
हाँ, हमने ये भी देखा कि एक बैलेंस्ड डाइट क्यों जरूरी है और ये हमें बीमारियों से बचाने में कैसे मदद करती है। हमने लाइफस्टाइल और डेफिशिएंसी डिजीजेस के कारणों और उनसे बचाव के तरीकों पर बात की, जैसा कि चैप्टर में बताया गया है।
और हमने हेल्दी ईटिंग हैबिट्स अपनाने और जंक फूड से दूर रहने की जरूरत पर भी गौर किया। कुल मिलाकर चैप्टर का सार यही है कि हम जो खाते हैं उसका हमारी सेहत पर सीधा और गहरा असर पड़ता है।
बिल्कुल।
और ये सारी जानकारी जो चैप्टर 3 से हमें मिली है, उसे ध्यान में रखते हुए श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात ये हो सकती है कि भाई, इस जानकारी के साथ कोई व्यक्ति अपने रोजमर्रा के खाने के विकल्पों को लेकर ज्यादा जागरूक कैसे बन सकता है, खासकर तब जब आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में समय की कमी हो।
हाँ, ये तो है।
कैसे छोटी छोटी सेहतमंद आदतें अपनी व्यस्त दिनचर्या का हिस्सा बनाई जा सकती हैं, ताकि इस चैप्टर की सीख असल जिंदगी में काम आ सके।
वाकई ये एक अहम सवाल है जिस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। और इसी विचार के साथ चैप्टर 3 पर आधारित हमारी ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको भोजन और पोषण से जुड़ी ये जानकारी उपयोगी लगी होगी।